الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة مريم کی یہ جو آیات ہیں نمبر 41 سے 50 تک، تو یہی کافی کلاسز سے چل رہی ہیں ہماری اس کلاس میں، ان کا ترجمہ ہی ہم پڑھ رہے تھے اور ترجمے کے تحت ہی کافی ساری ایکسٹرا ڈسکشن جو ہے وہ آ گئی تھیں، جس وجہ سے ملٹیپل کلاسز کے اندر کے آیات کا ترجمہ ہی ان کا چلتا رہا. اب خلاصہ تفسیر ہم آج شروع کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر مارک القرآن کے اندر، جیسا کہ آپ سے اکثر پتہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے دی گئی ہے. تو اس میں حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ مختصر تفسیر بین القوسین بیان کرتے ہوئے کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب یعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے. اچھا، کسی کے ریکارڈ کے مطابق ایسا تو نہیں کہ ہم نے خلاصہ تفسیر پڑھنی شروع کر دی تھی لاسٹ ویک، ہم نے نہیں شروع کری تھی ابھی، تو میں اس وجہ سے شروع سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس کتاب میں لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے تاکہ ان کو توحید و رسالت کا مسئلہ زیادہ منکشف ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو جو نبی علیہ السلام کا جو بعثت کا مقصد تھا اس دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چار بیان فرماتے ہیں نا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو لوگوں میں مبعوث فرما کر کے ان پر احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، ہے نا، ان کے درمیان رسول کو مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہے نا، یہ چار بعثت کے مقاصد کے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کر کے بیان فرماتے تھے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے تھے، یعنی ان کو گناہوں سے بچنے میں ان کو گائیڈ کرتے تھے. یہی ہے تزکیہ فرمانے کا مطلب، یزکیہم کا مطلب یہی ہے. ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا علم ان کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے. والحکمہ، اور حکمت ان کو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی سنت کے ذریعے سے ان کو حکمت سکھاتے تھے، کیونکہ سنت ہی حکمت ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے کتابی نالج، تو وہ تو یعلمہم الکتاب کے اندر آ گیا، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل نالج، یعنی کر کے دکھانا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی سنت کہلاتی ہے، تو اسی کو حکمت کہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے کاموں کے اندر ہی حکمت پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرنا لوگوں کے سامنے، تو یہ سارا کا سارا قرآن جو ہے وہ اسی کے اندر آ گیا نا، کہ پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے. اور مقصد کیا ہوتا تھا، وہ یہی جو کہ یہاں پہ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، کہ تاکہ ان کو توحید و رسالت کا مسئلہ زیادہ منکشف ہو جائے. توحید و رسالت کے بارے میں بتاتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اتنے سارے جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا اللہ، اور رسالت محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی کو پھر مختلف انداز سے نصرف الآیات ہے، مختلف انداز سے گھما پھرا کر کے طریقے طریقے سے لوگوں کو بتاتے رہتے تھے. تو یہاں پر ایک طریقہ، اسی بات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ کیا اختیار کیا، इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बाप का वाकया। ठीक है, अच्छा, तो काना सिद्दीकन नबिया, वो हर कौल फेल में बड़े रास्ती वाले थे। रास्ती वाले का मतलब सीधे रास्ते के ऊपर चलने वाले थे, कौल में भी और फेल में भी। सिद्दीक किसको कहते हैं? सिद्दीक उस शख्स को कहते हैं कि जिसके कौल और फेल के दरमियान तजाद ना हो, यानी इंटेंशनल तजाद ना हो, कि वो कहता कुछ हो करता कुछ और हो, ऐसा इंटेंशनल जानबूझ करके उसके कौल फेल के दरमियान तजाद ना हो, तो ऐसे शख्स को सिद्दीक कहते हैं। ठीक है ना, यानी ही बिलीव्स इन व्हाट ही इज सेइंग, यानी वो जो कह रहा है वो उसके ऊपर खुद यकीन रखता है। ठीक है, ये नहीं कि वो यकीन तो किसी और बात पर रखता है और कहता कुछ और बात है। ठीक है, तो जो यकीन रखता है अपने कहीं भी बात के ऊपर ना, और फिर उसके ऊपर खुद भी अमल करने की कोशिश करता है, अमल करके लोगों को दिखाता है, जितना वो कर सकता है अमल उतना वो करके दिखाता है, ऐसे शख्स को सिद्दीक कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्दीक की तारीफ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इंतहाई अहम तरीन वर्ड है। नबी सारे के सारे सिद्दीक थे, सही है, सारे के सारे नबी सिद्दीक थे, और उम्मतियों के अंदर जो सबसे अफजल दर्जा है जिस पर कोई उम्मती पहुंच सकता है वो सिद्दीकियत का दर्जा है। ठीक है, कौल फेल में बड़े रास्ती वाले थे, ये मुख्तसर सी इसकी तफसीर हो गई सिद्दीकियत की। और पैगंबर थे यानी नबी भी थे, और वो किस्सा जिसका जिक्र करना इस जगह मकसूद है, उस वक्त हुआ था, यानी क्या शान नुजूल है इन आयात का, वो किस्सा जो उस वक्त हुआ था कि काला दे अभी ही, जब उन्होंने अपने बाप से कहा या अबती, ए मेरे वालिद साहब, ए जैसे प्यार से उर्दू में कहते हैं अब्बू जी, राइट, अब्बू भी बहुत प्यार से कहने का वर्ड है, और अब्बू जी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वालिद साहब कहते हैं, कुछ लोग इस तरह से अच्छे जो अलकाब है बाप के लिए, तो अरबी में या अबती लिमा तअकुदु माला यस्मउ वला युक्सुरु वला युग्नि अनका शैया। जब उन्होंने अपने बाप से जो कि मुशरिक था कहा कि ए मेरे बाप, तुम ऐसी चीज की क्यों इबादत करते हो जो ना कुछ सुने, ना यस्मउ और ना कुछ देखे, वला युक्सुरु और ना तुम्हारे कुछ काम आ सके, है ना, वला युग्नि अनका शैया, आपके किसी काम नहीं आ सकती ऐसी चीज, मुराद बुत है, हालांकि अगर कोई देखता सुनता कुछ काम आता भी हो। देखें तफसीर में अब मजीद क्या कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये बात फरमाई ना अपने वालिद से कि जो कुछ नहीं देखता, जो कुछ नहीं सुनता, जो किसी काम नहीं आता, आप उसकी क्यों इबादत करते हैं। ठीक है ना, अब ये मजीद उसके ऊपर एक बात फरमा रहे हैं कि हालांकि अगर कोई देखता सुनता कुछ काम आता भी हो मगर वाजिबुल वजूद ना हो तब भी लायक इबादत नहीं है। वाजिबुल वजूद का मतलब क्या होता है कि जिसका के वजूद लाजमी हो, हमेशा हमेशा से हो और हमेशा हमेशा के लिए हो, ऐसे को वाजिबुल वजूद कहते हैं, राइट, अजल से हो अबद तक हो, ऐसे को वाजिबुल वजूद कहते हैं। तो बेशक जैसे इंसान हमारी बात को सुनते भी हैं, इंसान हमारे मामलात को देखते भी हैं और इंसान हमारे काम भी आते हैं, तो क्या हम इंसानों की इबादत कर सकते हैं क्योंकि वो देखते सुनते और काम आते हैं, क्या हम उनकी इबादत कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हालांकि उनके अंदर तो ये तीन सिफात नहीं है, ना देखने वाली, ना सुनने वाली, ना काम आने वाली। ठीक है, लेकिन उनके अंदर वाजिबुल वजूब वाली सिफत नहीं है, क्योंकि वाजिबुल वजूद जो है, वजूद जो है वो किसी के अंदर ये सिफत नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। ठीक है, तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कोई ये ना समझे इस आयत को पढ़ करके कि अगर कोई सुनता देखता और काम आता हो तो उसकी इबादत करनी जायज है, चुनाचे कह जाए कि इन औसाफ से भी आ रही हो, यानी ये जो बुत थे ये तो इन औसाफ से भी आ रही थे, तो वो बदरजा है ऊला लायक इबादत नहीं होगा। یعنی جو ان صفات کو رکھتا ہو اپنے پاس اس کی آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو جو ان صفات کو بھی نہ رکھتا ہو تو وہ تو اور بھی زیادہ عبادت کے قابل نہیں ہے، جیسے کہ یہ بت. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا نا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر یہ اسلوب یہ طریقہ بیان کرتے ہیں کہ کسی ایکسٹریم چیز کو بیان کر کے پھر وہ جو اس سے لیس دین ایکسٹریم چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ان کے اندر شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایکسٹریم بے بسی والی کیفیت بیان کری کہ نہ تو سنتا ہے نہ تو کوئی دیکھتا ہے، تو اس کی تو آپ بالکل بھی عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب سننے دیکھنے والوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو بالکل نہیں سنتے بالکل نہیں دیکھتے ان کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں نا. تو آگے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، کہ اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. مراد اس سے وہی ہے جس میں احتمال غلطی کا ہو ہی نہیں سکتا، بس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قطعاً حق ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی کا جو علم ہوتا ہے نا جو کہ نبیوں کے اوپر آتا ہے اور نبیوں کے واسطے سے پھر انسانوں تک پہنچتا ہے، یعنی جو علم ہم تک پہنچا نبیوں کے واسطے سے وہ وحی کا علم ہے. ٹھیک ہے، نبیوں کے اوپر یہ وحی بلا واسطہ آتی ہے یا آتی تھی جب تک نبی ہوتے تھے بغیر کسی واسطے کے. جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ اگرچہ کہ ہوتا تھا لیکن فرشتے کے واسطے کو واسطہ سمجھا بھی نہیں جاتا انسانی دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے کہ جب بارش برستی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش کے ایک ایک قطرے کو ایک فرشتہ لے کر کے زمین پر اترتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہماری دنیا کے اندر ہم ایون دین والے لوگ بھی جب بارش کا ذکر کرتے ہیں تو بارش برسنا ہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ فرشتے بارش برسا رہے ہیں. حالانکہ ان کو یقین ہوتا ہے اس بات کا نبی علیہ السلام کی بات پر کہ فرشتے بارش کے قطرے لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کا ذکر ہم بالکل بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایک اور مثال کہ جس کے اندر فرشتہ کرتا ہے اور ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ فرشتہ وہ کام کرتا ہے لیکن ہم فرشتے کا ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ بہت زیادہ ہمارے ارد گرد جو چیز ہمیں پتا ہے کہ جی فرشتے سے ایگزیکٹلی ماشاء اللہ موت. ٹھیک ہے، کہ ہمیں پتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ آتے ہیں اور انسان کی جان نکالتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا یا کبھی آپ نے خود کہا کہ فلانے شخص جو ہے وہ جب کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا یا محلے میں یا خاندان میں انتقال ہو گیا تو کوئی کہتا ہے کہ ملک الموت آئے انہوں نے آ کر کے اس کی جان نکال لی، او فلانے شخص کی ملک الموت نے جان نکال لی. کبھی بھی کوئی نہیں کہتا، بس یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں چلا گیا، حالانکہ یقین ہے کہ ملک الموت نے اس کی جان نکالی ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام اگرچہ کہ اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں لیکن وہ گویا کہ نہ ہونے کے برابر، اس طرح سے کہ بھئی وہ بلا واسطہ وحی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو، نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی کیونکہ انسانوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں. ٹھیک ہے نا، جب کوئی کسی کو مارتا ہے تب ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ اس کا انتقال ہو گیا، جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو ہم یہ کوئی تھوڑی کہتے ہیں کہ جی اس کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ فلانے نے مرڈر کر دیا اسے، کیونکہ انسان واسطہ بنا نا اس کی موت کا، تو انسان کے واسطے کو ذکر کرتے ہیں فرشتے کے واسطے کو ذکر نہیں کرتے. رائٹ، فرشتے کے واسطے کو ذکر نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے وہی کا بھی معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں کہ بلا واسطہ بغیر واسطے کے وحی نازل ہوئی، اور ہمارے اوپر یعنی ہم پر وحی نازل نہیں ہوئی تو نہیں کہتے، لیکن ہم تک وحی کیسے پہنچی؟ بالواسطہ پہنچی. لیکن یہ تو نہیں کہتے نا کہ جی ہم تک جو یہ قرآن اور حدیث کا علم پہنچ رہا ہے یہ وحی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہتے، کیونکہ بھائی ہم پر تو ڈائریکٹلی وحی نازل نہیں ہوئی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث اور یہ تفسیر وغیرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وحی نہیں ہے. بھائی یہ وحی ہے، فرق صرف کیا ہے واسطے اور بلا واسطے کا. है ना, हमारे पास बिलवास्ते पहुंच रही है, उनके पास वास्ते के साथ पहुंच रही है। कहने का मकसद क्या है, ये सारी तफसीर क्यों आपके सामने बयान कर रहे हैं कि जो कुरान और हदीस के जरिए, यानी कुरान और हदीस का जो इल्म हमारे पास पहुंच रहा है ना, कोई ये ना समझे कि ये वही नहीं है क्योंकि मैं तो नबी नहीं हूं तो मेरे ऊपर कैसे वही आ सकती है। वही भाई, बेशक आपके ऊपर वही नहीं आ रही, बिला वास्ता नहीं आ रही, बिल वास्ता भी आपके साथ आप तक वही ही पहुंच रही है, बिल वास्ता आप तक भी वही वही ही पहुंच रही है। और इसके बारे में इसको छोटा तस्वुर ना करें, इसको गैर अहम तस्वुर ना करें कि ये तो कोई जैसे कि कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है, जैसे कि मेडिसिन की नॉलेज होती है, तो ये भी उसी तरह की नॉलेज है। नहीं, ये उस तरह की नॉलेज नहीं है, ये वही है, ये अल्लाह ताला की बात है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई थी तो वो अपने वालिद मोहतरम से जो बात कर रहे थे ना, वही मामला हमारा भी है कि जब हम तक वही का इल्म पहुंचता है तो अब हम भी अपने वालिद मोहतरम से तमीज के साथ, वालिदा मोहतरमा से तमीज के साथ बेशक, लेकिन हमें भी उनको ये चीज बतानी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से, है ना, जैसे भी बताएं, वो हमारा काम है कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, किस तरीके से उनको समझाएं। लेकिन जब हम पर वही पहुंच गई तो अब हमारा भी वही रोल हो जाएगा जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रोल था अपने वालिद मोहतरम के साथ। मोहतरम तो खैर नहीं कह सकते, वो क्या, वो जो अल्लाह पे ईमान ना रखे उसको कैसे मोहतरम कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने बाप के साथ जो उनका रोल चल रहा था, जो उनका काम चल रहा था, वही काम हमारा भी हो जाएगा अपने वालिदैन के साथ। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा कि भाई नहीं अम्मी है तो अम्मी तो मेरे बारे में कोई गलत सोच ही नहीं सकती क्योंकि वो मेरी माँ है, तो अब जो वही की का इल्म है ना उसको तो मैं रखूं साइड पर और बात मैं मानूं अम्मी की, अगरचे के वो वही के खिलाफ बात कर रही है, अगरचे के वो मुझे गुनाह करने के लिए कह रही है, लेकिन चूंकि मेरी माँ है और माँ से ज्यादा कोई दूसरे से मोहब्बत नहीं करता है तो इस वजह से मुझे माँ की बात माननी चाहिए, वही की बात नहीं माननी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, माँ की बात नहीं मान सकते अगर वही के खिलाफ है। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, पक्की ठक्की हदीस है ये, और इसकी बुनियाद पर जो है वो शरीयत की, यानी शरीयत की बुनियाद खड़ी हुई है इस हदीस के ऊपर, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तो वालिद साहब हो या वालिदा साहिबा हो या दादा अब्बू हो या दादी अम्मा हो या नाना नानी हो, जो भी हो, उनको इनकार करना पड़ेगा कि जी ये बात तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये वही के खिलाफ है, बेशक आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना हो फिर भी इनकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो फरमाया कि जी मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कतअन हक है क्योंकि ये वही है। जब ये बात है तो अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक और दर्जे आ गए क्योंकि तो नबी भी थे ना, और नबी के जिम्मे तो होता है ना बात को पहुंचाना, भी लाजमन फर्ज होता है नबी के ऊपर हर सूरत में बात को पहुंचाना। हम जो है वो उसके लिए कुछ मसलहत, मसलहत तो खैर नबी भी इख्तियार करते हैं, लेकिन हमारा ये भी है कि भाई हम अगर दावत का काम नहीं करेंगे तो कोई और तो कर लेगा ना, यानी ऐसा तो नहीं है कि बस हम नबी हैं और हम अगर काम नहीं करेंगे तो कोई फ्री काम हो ही नहीं सकता, किसी और वास्ते से भी काम हो सकता है। नबी का मामला ये नहीं था, नबी ने खुद ये काम करना है। ठीक है, तो इस वजह से नबी को ये बात जरूरी सी कहनी पड़ती थी, फत्तबिअनी, आप मेरी इत्तबा करें, आप मेरी इत्तबा करें। ठीक है, हम ये बात जो है वो बराए रास्त कभी कह भी सकते हैं मौके के हिसाब से, कभी नहीं भी कह सकते हैं कि आप मेरी इत्तबा करें। हाँ, हमारे ऊपर जो फर्ज है वो ये है कि हम आपकी इत्तबा नहीं करेंगे, अगर आप वही के खिलाफ बात करेंगे हम आपकी इत्तबा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहना कि आप मेरी इत्तबा करें ये हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही का इल्म उन तक, हमारे वालिदैन तक, हमारे बुजुर्गों तक, यानी जो खानदानी बुजुर्ग होते हैं उन तक जो है वो हमारे अलावा भी पहुंच सकता है, तो मेरी मेरी जात की इत्तबा करना ये जरूरी नहीं है उनको कहना। ठीक है, ये जरा एक मुश्किल सा कॉन्सेप्ट शायद बन गया है, अगर किसी को कोई इश्काल हो, बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ लीजिए। यानी आज क्या कहना चाह रहा है, आप ये कहना चाह रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर दो जिम्मेदारियां थी। एक जिम्मेदारी ये थी कि बाप उनको कोई गलत काम करने को कहे तो वो बाप को इनकार कर दें, ठीक है, ये एक जिम्मेदारी थी। और दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि वो बाप को कहें कि आप मेरी इत्तबा करें, ये दूसरी जिम्मेदारी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, नबी होने की वजह से। हमारे ऊपर इन दो में से एक जिम्मेदारी आती है, यानी फर्ज। एक जिम्मेदारी क्या है कि अगर वो हमें वही के खिलाफ कुछ करने को कहें तो हम ना करें वो काम, ये एक जिम्मेदारी है जो कि हम सब के ऊपर आती है, ठीक है, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। दूसरी जो जिम्मेदारी थी वो हमारे ऊपर इसलिए नहीं आती क्योंकि हम नबी नहीं है, वो क्या कि अपनी अम्मी को बोले आप मेरी इत्तबा करें, अब्बू को बोले आप मेरी इत्तबा करें, नहीं, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम नबी नहीं है। हम अपने बुजुर्गों का यानी बोल सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है बोलना, ठीक है, क्योंकि हम नबी नहीं है और जो जो वही का इल्म है वो हमारे वालदैन तक किसी और वास्ते से भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो हम उनको बस ये कह सकते हैं तरगीबन, तमीज के साथ तरगीबन ये कह सकते हैं कि आप दीन की इत्तबा करें, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, आप शरीयत की इत्तबा करें, ये हम उनको तरगीबन कह सकते हैं अगर वो फायदा नजर आ रहा हो ये कहने में, वरना ये कि बेहतर है कि उनको बस जी 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 कह करके बस सुनते रहें, ठीक है। ये जी 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 जो है ना, उर्दू का जो लफ्ज जी है, ये बड़ा काम का वर्ड है, ठीक है ना, और ये भी सीखना पड़ता है, ठीक है ना, और इतना आसान नहीं है ये जी कहना, ठीक है, यानी रिएक्ट ना कर रहे हैं, गुस्से में ना आ जाएं और कुछ और ना करें, बस वो जो कह रहे हैं जी 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 जी, ठीक है, और बस फिर उसके बाद करना वही है जो कि अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नबी थे, तो उन्होंने कहा कि ए मेरे बाप, तो आप मेरे कहने पर चलो, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा, और वो क्या है, तौहीद का रास्ता, ठीक है, क्योंकि वो शक में उबतला था। ए मेरे बाप, तुम शैतान की परस्तिश ना करो, ला तअबुदु शैतान, ठीक है, या अबती ला तअबुदु शैतान, तुम शैतान की परस्तिश मत करो, यानी शैतान को और इसकी इबादत को तो तुम भी बुरा समझते हो, ठीक है ना, यानी ये जो लोग थे इनको शैतान का पता था, ये नहीं है कि इनको, यानी चूंकि बुद्ध की परस्तिश करते थे तो शैतान से ये लोग ना वाकिफ थे, शैतान से इंसानियत जो है ना वो हमेशा वाकिफ रही है, ठीक है, हमेशा शैतान से इंसानियत वाकिफ रही है, जिस तरह रहमान से वाकिफ रही है हमेशा कि रहमान कौन है, रहमान से मुराद अल्लाह ताला खालिक कौन है, रहमान के लफ्ज़ से भी वाकिफ रहे हैं बल्कि, ठीक है, उसी तरीके से शैतान के लफ्ज़ से भी वाकिफ रहे हैं, वाकिफ यानी नोन है ये वर्ड्स अल्लाह, ये इंसानियत के अंदर हमेशा से और हमेशा रहेंगे, लेकिन होता क्या है, भूल जाते हैं, मौके पर भूल जाते हैं, रहमान को भी भूल जाते हैं, शैतान को भी भूल जाते हैं, दोस्त को भी भूल जाते हैं, दुश्मन को भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप था, इसको भी पता था शैतान के बारे में, तो उसी को तफसीरन लिख रहे हैं हजरत कि शैतान को तुम और उसकी इबादत को तो तुम भी बुरा समझते हो, और बुत परस्ती में जब तुम बुत परस्ती कर रहे हो तो शैतान परस्ती तो बिल यकीन लाजिम है कि वही ये हरकत करवाता है, ठीक है। शैतान का क्या काम है कि वो हर वो काम करवाए, करवाने की कोशिश करे जो कि तौहीद के खिलाफ है, ठीक है। तो कहते हैं कि शैतान परस्ती तो लाजिम है क्योंकि बुत परस्ती जो है वो शैतान के कहे के बगैर कोई बंदा नहीं कर सकता, और किसी की ऐसी अतात करना कि हक ताला के मुकाबले में भी उसकी तालीम को हक समझे, यही इबादत है, ठीक है। बस बुत परस्ती में शैतान परस्ती हुई, ठीक है, यानी तुम जो बुत परस्ती कर रहे हो तो शैतान के कहने की वजह से कर रहे हो। तो जैसे कि पीछे भी हम तफसील के साथ इबादत के मफहूम को डिस्कस कर चुके हैं कि इबादत जो है वो कुछ आमाल कर लेने को इबादत नहीं कहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि नमाज की मिसाल देते हैं कि नमाज पढ़ना इबादत है, नहीं, नमाज पढ़ना शराइत के साथ इबादत है, अगर आप उन शराइत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो इबादत नहीं है ये नमाज, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نماز مطلقاً عبادت نہ بنے, بلکہ عبادت مطلقاً عبادت جو ہے وہ اطاعت بنی, اطاعت مطلقاً عبادت کہلائے گی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ ہے عبادت. تو نماز اگر کسی ایسے وقت میں پڑھ رہے ہیں, خصوصاً عورتوں کا معاملہ, کیونکہ مکروہ وہ جو مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے سوائے مکروہ اوقات کے, ٹھیک ہے نا, جب سورج طلوع ہو رہا ہو, سورج غروب ہو رہا ہو, اور جو زوال کا وقت ہو وہ مکروہ اوقات کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. لیکن یہ جو مکروہ اوقات ہیں یہ حدیثوں سے ثابت تو ہیں, لیکن تمام فقہا کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا یہ مکروہ اوقات ہیں, اور ان میں آپ نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی وہ, یعنی آپ نہیں نماز پڑھ سکتے, لیکن باقی فقہا کے نزدیک ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عورتوں والی مثال زیادہ, کیونکہ تمام فقہا کے نزدیک حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, نفاس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ حیض میں نماز پڑھنا شروع کر دے, کیونکہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے اور رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے اور قعدہ بھی ہے اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, تو میں تو پڑھوں گی بھائی, مجھے تو اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے, مجھے تو اپنے پروردگار کی عبادت کرنی ہے, میں تو حیض میں بھی نماز پڑھوں گی. تو حیض کے اندر نماز پڑھنا یہ عبادت کہلائے گی؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ تو نافرمانی کہلائے گی, یہ تو معصیت کہلائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلقاً نماز کا فعل عبادت نہیں ہے, بلکہ اطاعت عبادت ہے, ٹھیک ہے. تو وہی حضرت فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں بھی یعنی کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی تعلیم کو حق سمجھے, یہی عبادت ہے. اب ہم جیسے دیندار اچھے گھرانوں کے ماحول میں یہ چیز کیسے اپلائی ہوتی ہے, وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے افراد کے معاملے میں مسئلہ, یعنی عورتوں کا ساتھ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے گھر کے کسی فرد کے حکم کو مان رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے شوہر کے حکم کو مانے, اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے, چاہے امی کے حکم کو مانے, چاہے ابو کے حکم کو مانے, چاہے ساس کے حکم کو مانے, چاہے سسر کے حکم کو مانے, چاہے اپنی اولاد کے حکم کو مانے. اولاد صاحب جو ہے وہ اتنا تیس مار خان بن گئے کہ امی کو کہہ رہے ہیں کہ امی آپ پردہ نہ کریں, ہاں میرا بچہ تمہاری بات میں کیسے ٹھکرا سکتی ہوں, تم تو میری آنکھوں کے تارے ہو, تم تو میرے لاٹلے ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ ہو, ہاں تم کو اگر جو ہے وہ میرا بنٹھن کر کے باہر نکلنا اچھا لگتا ہے تو میں نکلوں گی, تمہاری خاطر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر یہ عورت جو ہے وہ اولاد کی عبادت کرنے والی کہلائے گی, کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اولاد کے حکم کو مان رہی ہے, لیکن حالانکہ اولاد کو سجدہ تو نہیں کر رہی, اولاد کے سامنے کھڑی ہو کر کے نماز تو نہیں پڑھ رہی, لیکن پھر بھی یہ اولاد کی عبادت کرنے والی کہلائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے اوپر اولاد کے حکم کو ترجیح دے رہی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ لاجک اختیار کری کہ بھئی آپ بھی تو شیطان کو برا سمجھتے ہیں نا. دیکھیں لاجک جب ہوتی ہے نا, لاجیکلی کسی کو بات سمجھانا ہوتا ہے نا, تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا پوائنٹ استعمال کریں جو کہ متفقن علیہ ہو, متفقن یعنی جس کے اوپر اس بندے کا بھی اتفاق ہو, آپ کا بھی اتفاق ہو, ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی ایسے پوائنٹ کو استعمال کر کے جب بات سمجھانے کی کوشش کریں نا, تو اسی کو جو ہے وہ لاجک سے بات سمجھانا کہتے ہیں, منطق سے بات سمجھانا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا عقلی دلیل اسی کو کہتے ہیں. لیکن لازمی اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ استعمال کریں جو کہ اس کے نزدیک بھی ایکسیپٹڈ ہو اور آپ کے نزدیک بھی ایکسیپٹڈ ہو. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کون سا پوائنٹ چوز کر رہے ہیں؟ شیطان کی برائی, کہ بھائی آپ بھی شیطان کو برا سمجھتے ہیں, میں بھی شیطان کو برا سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ جو بت پرستی ہے یہ تو شیطان پرستی بن جائے گی, پھر یہ تو آپ کو بھی یہ بات نہیں سچ تھی کہ آپ شیطان پرستی کرنا شروع کر دیں. تو دعوت کے اندر جو ہے نا وہ یہ طریقہ جو ہے نا یہ لازمی ہوتا ہے استعمال کرنا, کامنلی ایکسیپٹڈ پوائنٹس, ٹھیک ہے. اگر کامن ایکسیپٹڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہے نا, تو پھر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر پچھلی جو ہماری مردوں والی کلاس تھی ان اسینشلز فار مین, اس میں سورۃ طہٰ کی تفسیر میں کچھ بات ایسی آ گئی कि जी हमें जो है ना वो मैं ये समझा रहा था कि भाई बात करने वाले को देखना बड़ा अहम है, बात की अहमियत बात करने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा है और उससे आप कोई ऐसी बात होती हुई देख रहे हैं जो कि सही नहीं लग रही, ठीक है, जो कि सही नहीं लग रही, तो आप क्या करेंगे उसकी, उस गलत, बजाहिर गलत बात की कोई तावील करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। भाई हो सकता है कि वो किसी मसलियत की वजह से ऐसी बात कर रहे हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से ऐसी बात कर रहे हो, या हो सकता है कि वो बात तो सही कर रहे हैं लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही वो बात, ठीक है ना, हो सकता है वो बात तो सही कर रहे हैं लेकिन मेरी मेरा इल्म जो है वो महदूद है, इस वजह से मैं उसकी उनकी बात को गलत समझ रहा हूँ। ये सारी तावीलात करनी पड़ेंगी। क्यों? इसलिए कि बात करने वाला जो है वो ऐसा बंदा है जिसको के लोग मुत्तकी परहेजगार और अच्छा समझते हैं, खुसूसन उलमा उनको उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, तो हमें उनकी बजाहिर गलत बात की तावील करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी तरफ भी है कि जो धोखेबाज, नॉन धोखेबाज हो, नॉन जो है वो झूठ बोलने वाला हो, इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाला हो, ऐसा कोई वेल नोन बंदा हो या ऐसा कोई वेल नोन ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के काम करती हो, अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बंदा जो है वो कोई अच्छा काम कर रहा हो, ठीक है, तो उसके इस बजाहिर अच्छे काम, यहां पर भी बजाहिर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, बजाहिर अच्छे काम के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते हैं, उसके बजाहिर अच्छे काम के ऊपर हम एतबार नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसको शक की निगाह से देखना होगा। उसकी वजह क्या बनेगी? क्योंकि वो उस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो लोगों को धोखा देता है, वो लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो उसका बजाहिर अच्छा काम जो है उसको शक की निगाह से देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भी वो धोखे ही के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये बात मर्दों की क्लास में चल रही थी, ठीक, यहाँ पर आपको नेकों की तरफ आपको तावील देनी पड़ेगी उनके बजाय बुरे काम की। लेकिन जो नॉन धोखेबाज लोग होते हैं तो उनके नेकी के काम को आपको शक की निगाह से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है वो जो काम कर रहे हैं वो भी धोखे के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। अब ये बात चल रही थी तो इसके ऊपर एक दो हजरात ने जो है वो एतराज भी किया कि भाई आप क्यों जजमेंटल क्यों हो रहे हैं, वो हमें तो बड़ा इसका होता है ना, शैतान के लिए हम बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं जजमेंटल वाली, ठीक है ना, हम उलमा के ऊपर जजमेंटल होते हैं उसकी हमें फिक्र नहीं पड़ती कि भाई हम उलमा की बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए जजमेंटल क्यों हो रहे हैं। लेकिन जहां दुनियादार लोग आ जाएं और यानी फासिक फाजिर काफिर, तो वहां पर अगर उनकी बात को कोई डाउट करे ना तो कहते हैं जजमेंटल क्यों हो रहे हैं आप, है ना। तो बस वही किसी ने इस तरह की बात कर दी कि भाई आप जजमेंटल होने की क्या जरूरत है, अगर कोई बुरा बंदा जो है वो नेक, मैंने कहा भाई मैं बुरे इंसान की बात नहीं कर रहा कि वो गुनाह का काम करता है तो आप उसकी नेकी को भी जो है वो शक की निगाह से देखें, नहीं ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हम एक डिफरेंट सिनारियो की बात कर रहे हैं कि जिसमें कि कोई धोखा दे रहा है, धोखा देता है हमेशा, अब वो जो है वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं बजाहिर जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनी, अभी बिल्कुल सीधी सी बात है, हम इसी वजह से मिसाल भी इस्तेमाल कर, हम इसी वजह से बात भी कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं ये मशहूर जमाना धोखेबाज है ना, इनकी दवाओं के जो 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 इनके जो स्कैंडल्स हैं और इनके जो यानी जिस तरीके से इन्होंने इंसानियत को अपनी दवाओं के जरिए से ये जो लेटेस्ट इंडस्ट्री है जो नुकसान पहुंचाते हैं, इनका हमें अच्छी तरीके से पता है, बहुत सारे वाकयात पता है, राइट, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। तो अब अगर ये कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं मार्केट के अंदर जिस प्रोडक्ट का आपको कुछ नहीं पता, कैसे आ गई ये 5-6 महीने के अंदर इस तरह की एक प्रोडक्ट कैसे लेकर के आ गए, अब वो उस प्रोडक्ट को जो है वो इंसानियत की निजात करार दे रहे हैं, है ना। अब ये इस प्रोडक्ट को जो उन्होंने 4-5 महीने में जिस तरह से भी बनाई है वो उसको इंसानियत की निजात करार दे रहे हैं, तो भाई हम उनकी इस बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम आंखें बंद करके उनकी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। भाई क्यों? इसलिए कि वो नॉन फ्रॉडी हैं, नॉन जो है वो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, नहीं कर सकते ना, हमें उसके लिए जजमेंटल होना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जो है वो जो एतराज किया, तो फिर साजिश ने, मैंने कहा भाई ठीक है आपके बात समझ में नहीं आ रही, तो कम से कम इतनी बात तो आप मानते हैं ना, यानी एक कॉमन एक्सेप्टेबल पॉइंट तो आपको पता है कि नहीं है कि हम फितने दज्जाल के दौर में दाखिल हो चुके हैं, फितने दज्जाल का दौर, और ये फितने दज्जाल का दौर जो है ये तो है ही धोखे वाला दौर, ठीक है ना, ये तो यानी इंतहाई यानी धोखे वाला वक्त है जिस वक्त के अंदर हम मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये कम से कम एक कॉमनली एक्सेप्टेबल पॉइंट है कि नहीं हमारे और आपके दरमियान कि हम फितने दज्जाल में दाखिल हो चुके हैं। अगर आपको फितने दज्जाल समझ में आता है तो फिर तो आपको हर चीज को जो कि किसी बुरे इंसान की तरफ से आ रही है या बुरे इदारे की तरफ से आ रही है, आपको उसको धोखा और फरेब की शक्ल में उसको देखना पड़ेगा, उसको कि उसके अंदर धोखा और फरेब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और वजह उसकी क्या बनेगी, क्योंकि हम फितने दज्जाल के दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो मैं उसको इसी तरीके से समझा रहा था कि भाई हमारे और आपके दरमियान कॉमन एक्सेप्टेबल पॉइंट क्या है, फितने दज्जाल का दौर। अगर ये आप मानते हैं तो फिर आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि भाई काफिरों की ये तंजीमें, काफिरों के ये मुल्क और उनके जो ये पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जैसे आजकल बेचारा यानी एक बिल गेट्स जो है वो सारी की सारी चीज़ों का इल्ज़ाम जो है वो बिल गेट्स बनना शुरू हो गया, ठीक है, बेचारा है कि नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो पर्सनैलिटीज हैं इस तरह की, ठीक है, तो अब इनका जब आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि ये गलत काम करते हैं, तो फिर आप इनके ऊपर कैसे आंखें बंद करके एतमाद कर रहे हैं, ठीक है, इतना इंतजाल में, तो फिर आपको और भी ज्यादा जो है वो एहतियात करने की जरूरत है। तो बहरहाल बात जो है वो कॉमन एक्सेप्टेबल पॉइंट्स के साथ करी जाती है, जैसे कि फितना दज्जाल का जमाना, ये तकरीबन सारे दीनदार मुसलमान जो है उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम फितना दज्जाल के दौर में दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद से बात कर रहे थे तो वहां पर भी एक कॉमन एक्सेप्टेबल पॉइंट को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा आगे फरमाते हैं कि जी बेशक शैतान हजरत रहमान का नाफरमानी करने वाला है, इन शैतान अलिर्रहमान असिया, नाफरमानी करने वाला है, तो वो कब अतात के लायक होगा, ठीक है, जो भी काफिर बुतों की परस्तिश करते थे ना, तो वो बुतों को यानी बुतों को अल्लाह ताला का मुकर्रब समझ करके परस्तिश करते थे, बुतों को अल्लाह ताला का मुकर्रब समझ करके उनकी परस्तिश करते थे, और नियत उनकी क्या होती थी कि चूंकि ये बुत अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं तो ये हमें भी अल्लाह के मुकर्रब बना देंगे, इसलिए हम इनकी परस्तिश करते हैं। मकसद क्या, असल मकसद अल्लाह के करीब होना था, ठीक है, बुतों को तो वो वास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते थे, ठीक, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको बता रहे हैं कि भाई ये तो अल्लाह ताला का करीबी कोई थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला का नाफरमान है शैतान, तो ये आपको कैसे अल्लाह ताला के करीब कर सकता है। जो शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान है तो शैतान के कहने के ऊपर आप बुतों की परस्तिश जो कर रहे हैं तो इन बुतों से आपको क्या फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि बुतों तक आपको पहुंचाया किसने, शैतान ने पहुंचाया, शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान है, तो आपका असल मकसद तो अल्लाह के करीब होना था ना, तो अल्लाह के करीब होने के लिए तो आप किसी ऐसे की बात माने ना कि जो कि अल्लाह ताला के वाकई करीब हो, अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा हो, है ना, जो नाफरमान है वो आपको कैसे अल्लाह ताला के करीब पहुंचा सकता है। तो देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी कितनी लंबी लॉजिक लेकर के आ रहे हैं, असल इनका मकसद क्या था, बुतों की परस्तिश से रोकना, इन्होंने क्या लॉजिक इस्तेमाल करी कि बुतों की परस्तिश करने को आपको शैतान ने कहा, और आपका असल मकसद है अल्लाह के करीब होना, शैतान जो है वो तो अल्लाह ताला का नाफरमान है, चूंकि वो अल्लाह का नाफरमान है इसलिए वो अल्लाह के करीब ना खुद है ना आपको अल्लाह के करीब कर सकता है, तो शैतान की बात मान करके आप अल्लाह के करीब कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी लंबी लॉजिक है ये, यानी अच्छा खासा इसके अंदर स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इस लॉजिक के अंदर जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को पेश कर रहे हैं। एवरी मास इज कंसिडर्ड ए मेलिग्नेंसी अनलेस प्रूवन अदरवाइज इन ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी एवरी मास इज कंसिडर्ड ए मेलेग्नेंट। अच्छा, मेलेग्नेंट मास यानी बिनाइन जो होता है वो होता है जिसके अंदर के कैंसरस चीज नहीं होती है, ठीक है, और जो मेलेग्नेंट होता है वो होता है कि जिसके अंदर बाकायदा कैंसर हो, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी की है, ये जो माशाल्लाह डॉक्टर साहब आए तो ये बेसिकली मिसाल ला रही हैं अपनी मेडिसिन से, मेडिसिन की नॉलेज से, ठीक है, कि जब आप सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं किसी ऐसे बंदे का जिसको पेट में दर्द हो रहा हो, ठीक है ना, तो अब आप उसके पेट का स्कैन करते हैं और उस बंदे के पेट में आपको एक मास नजर आता है, यानी एक एक कोई चीज, कोई ऐसी चीज नजर आती है जो कि वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। वहां पर तो स्टमक होना चाहिए था, वहां पर तो ये चीज यानी नॉर्मल जो जो बॉडी और ऑर्गन्स है वो होने चाहिए थे, लेकिन आपको एक ग्रीन कलर का एक अजीब सा मास नजर आता है अंदर, ठीक है ना, यानी एक 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 कुछ कुछ चीज नजर आती है आपको। तो अब आपको पता नहीं होता कि वो जो चीज सीटी स्कैन में नजर आई है वो कैंसरस है, यानी कैंसर कॉजिंग है, या वो बस ऐसे ही एक मास है जो कि वहां पैदा हो गया है, बस कैंसर नहीं होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो आप जो डॉक्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स जो हैं वो फिर उसका बायोप्सी करते हैं, यानी बाकायदा उसका पोर्शन काट करके निकालते हैं, फिर उसको लैब में भेजते हैं, लैब में उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके टिश्यूज का, उसके सेल्स का, और फिर देखा जाता है कि वाकई इसके अंदर कैंसर था कि ये कैंसरस नहीं है। लेकिन जब तक ये बायोप्सी के रिजल्ट्स नहीं आते हैं ना, ये जो फरमा रही है वो ये कि आप उस मास को कैंसरस ही कंसिडर करते हैं जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि वो कैंसरस नहीं है। ये काम क्यों करते हैं? बीइंग जजमेंटल फॉर आवर ओन बेनिफिट, क्योंकि मास किसी बॉडी के अंदर हो जाना ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक एबनॉर्मल चीज है, ठीक है। तो एबनॉर्मल चीज को फिर शक की निगाह से देखा जाता है, एबनॉर्मल चीज को शक की निगाह से ही देखा जाता है अपने बेनिफिट के लिए, ये हमारा बेनिफिट है इसके अंदर, शक की निगाह से देखना एबनॉर्मल चीज को। नॉर्मल चीज को शक की निगाह से नहीं देखा जाता कि भाई सीटी स्कैन किया तो सीटी स्कैन करके ना अंदर फेफड़े नजर आ रहे हैं, दिल नजर आ रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारे अंदर। भाई क्यों गड़बड़ होगी, जब सब चीजें नॉर्मल नजर आ रही हैं सीटी स्कैन में, तो फिर क्यों गड़बड़ होगी, फिर वो आप कैंसर की दवा कैसे उसको देना शुरू कर सकते हैं? नहीं, आप उसको कैंसर कैंसर ना कंसिडर करें क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं वो, ठीक है। ऊपर से आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अंदर सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर आप दर्द की तावील करेंगे, है ना, जो ऊपर से दर्द हो रहा है उसकी तावील करेंगे कि भाई ये दर्द जो है ना वो हो सकता है कि आपका पेट खराब हो गया हो, या हो सकता है आपको वो स्टमक फ्लू हो गया था उस वक्त, तो उस वजह से आपके पेट में दर्द शुरू हो गया था, अंदर कुछ नहीं है, डोंट वरी, ठीक है ना, क्योंकि अंदर सब कुछ नॉर्मल है। तो ऊपर से जो दर्द हो रहा है उसकी तावील करेंगे, है ना, और उसको फिर आप ब्रश ऑफ कर देंगे, लेकिन अंदर आपको मैस नजर आया है जो कि एबनॉर्मल चीज है, किसी इंसान की बॉडी में मैस नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल चीज है, अब उसको शक की निगाह से देखेंगे। बिल्कुल यही मामला इंसानों के साथ भी होता है, जो नॉर्मल इंसान है यानी नेकी तकवा की जिंदगी गुजार रहे हैं, उलमा का उनके ऊपर एतमाद है, ये भी बड़ा जरूरी है, उलमा का उनके ऊपर एतमाद है, नेकी तकवा की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अब उनसे आपने कोई गलत चीज देखी तो आप उसकी तावील करेंगे, है ना, जैसे अभी पीछे समझाया, क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं, राइट। बाकी जो लोग हैं जो कि अल्लाह की नाफरमानी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि लोगों को धोखा पहुंचाने वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी अगर कोई सही बात भी नजर आ रही हो ना, उसको भी आप शक की निगाह से देखेंगे, ठीक है। और ये जो है वो एहतियात का तकाजा इसी के अंदर है। चले, जरा आपकी एक साल का बस ये पैराग्राफ खत्म करके क्लास रोक देते हैं क्योंकि आपको दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। तो कहते हैं कि ए मेरे बाप या अबती इन्नी अखाफु अई यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून अल शैतान वलिया, कि मैं अंदेशा करता हूँ यानी मुझे खौफ है, और वो अंदेशा यकीनी है, यानी ये जो अंदेशा है ना, ये यानी यकीन کی بنیاد پر ہے یہ اندیشے کے لفظ سے چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ احتمال ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہم اردو زبان میں اندیشہ کہتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں یہ احتمالی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو شاید نقصان پہنچ جائے, نہیں, اللہ کی نافرمانی کریں گے, شیطان کی فرما برداری کریں گے تو یقیناً آپ کو نقصان پہنچے گا. اسی وجہ سے حضرت نے بریکٹس کے اندر اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ جو اندیشہ ہے نا وہ یقینی اندیشہ ہے, کیا کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے, خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو, پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ. یعنی جب اطاعت میں اس کا ساتھ دو گے تو نفس عقوبت میں بھی اس کا ساتھ ہوگا. عقوبت سزا کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جب آپ نے شیطان کا ساتھ دیا یعنی اس کی اطاعت کری تو بھائی سزا بھی جس طرح شیطان کو ملے گی اسی طرح آپ کو بھی ملے گی. وہ شیطان کو دنیا میں عذاب نہ ہوا ہو, کیونکہ دنیا میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے, لمبی عمر دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. شیطان کو عذاب آخرت میں ہی ہوگا, جبکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے, آخرت میں تو ہوگا ہو گئی لیکن دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی گو شیطان کو دنیا میں عذاب نہ ہوا ہو اور اس شیطان کی معیت اور مشارکت فی العقوبت کو کوئی اپنی بھلائی چاہنے والا پسند نہ کرے گا, ٹھیک ہے. بس یعنی بات سمجھ میں انشاءاللہ آگے ہوگی, کیونکہ بہت ساری آلریڈی اس کے اوپر باتیں ہو چکی ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ اگلی کلاس میں پھر سے پوچھ لیے گا, بیچ میں کسی کو پوچھنا تھا تو وہ پوچھ سکتے تھے, کبھی ہم کسی کو منع نہیں کرتے سوال کرنے سے بیچ میں. باقی پھر اگلی کلاس پڑھیں گے. السلام علیکم.